हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 18, टेक्स्ट नंबर 65। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, मन्नना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मनो भव मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। इतना सुंदर श्लोक है, ऐसा लगता है पढ़ते ही जाओ। कृपया शब्दों का अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं मन मना, मन मना मेरा मेरे, और विषय मना मतलब मेरे विषय में सोचो, मन मेरे विषय में सोचो, और आगे भव हो मत भक्तो। मत मत जो वर्ड होते हैं ना यहाँ पर शुरू में जो मन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है मन है। ये देखो अगर आप संधि विच्छेद में देखेंगे तो उसको मत कहा गया है, इसका मतलब होता है मेरा मनन करो है, और मत भक्तो मेरा भक्त बनो। जो भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं भगवान को, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मन मना मेरे विषय में सोचो, भाव बन जाओ क्या मन मत भक्तो मेरे भक्त बन जाओ, मत याजी मेरा पूजन करो, माम यानी मुझको नमस्कुरु नमस्कार करो, माम मेरे पास एव ही ऐश्यसी आओगे सत्यम सत्य सच सच बिल्कुल 100% भगवान सत्यम ते सच कह रहा हूँ ते तुमसे प्रतिजाने वादा या प्रतिज्ञा करता हूँ। क्यों प्रियोसी में प्रिय असी हो में यानी मुझको। अनुवाद देखिए, भगवान कह रहे हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अत्यंत ही सुंदर भगवान के मुखारविंद का निकला हुआ ये श्लोक है, बहुत ही प्रिय श्लोक है समस्त भक्तजनों को। हम इसको समझने के लिए गुरु और कृष्ण से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागृजातम् सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। आज भगवान हमें सर्वगुह्यतम ज्ञान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। भगवान ने हमें बताया, पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने 63 में कह दिया, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्यतरम मया विमर्श तदशेषेण यद इच्छसि तथा करो। मैंने तुम्हें बहुत ही सीक्रेट और मोर सीक्रेट रहस्य बता दिए हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम उनको अच्छी तरह से विमर्शाई तरह उनको सोचो, उनके ऊपर विचार करो, फिर एज यू लाइक सो यू एक्ट, ऐसे आपको अच्छा लगता है ऐसे आप कार्य करो। लेकिन आगे भगवान ने कहा, चलो वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, अब भगवान कह रहे हैं 64 में भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम भूय क्षणु मे परम वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब तक तो सीक्रेट और मोर सीक्रेट बताया, लेकिन अब सर्व गुह्यतम सब सीक्रेट्स का राजा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जितना भी बताया अभी बता चुका हूँ, उसमें सबसे ज्यादा उत्तम ज्ञान मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और ये मेरे परम वचन है। और भगवान कहते हैं ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, इष्टोऽसि मे दृढमिति, बिकॉज आई लव यू सो मच, कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करता हूँ। और जो किसी को प्रेम करता है तो उसे किसे पता चलता है कि वो उसे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसका हित चाहता है। प्रेमी का पता कैसे चलता है कि वो उसका हित चाहता है? नहीं, आप बलि उससे मुझे अच्छा ना भी लगे, लेकिन उससे वो कार्य करने नहीं दूंगी जो कि उसके लिए फायदेमंद ना हो। तो भगवान ने कहा अब तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें जो बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा गुह्य है, तो फिर वो तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम उसको करो। पहले भगवान ने इजी छोड़ा, बोला उसको छोड़ दो आप आपकी मर्जी, लेकिन अब बोला अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो। आप सोचने के लिए दिया नहीं चांस, बोला क्या करना है वो भगवान श्री कृष्ण आज हमें 65 श्लोक में बता रहे हैं। अर्जुन को बोल रहे हैं, मन्मनाभवमद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु। देखो अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इससे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा हित अगर किसी चीज में है तो वो सिर्फ इन चार कार्य करने में है। क्या कार्य भगवान ने बताए? मन मना, यानी हृदय में केवल मेरे विषय में सोचो। तुम अगर कुछ सोचते हो तो उसका केंद्र में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान पहले बता चुके हैं कि अगर आप, भगवान कहते मेरे विषय में सोचो, क्योंकि यदि मेरे विषय में नहीं सोचोगे तो मेरी माया के विषय में सोचोगे, और यदि तुम मेरी माया के विषय में सोचोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। 8.6 में भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिसका सोचते हैं, जिस जिसके बारे में मनन करेंगे, जिस जिसका जिस जिसको स्मरण करेंगे तो क्या होगा? तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भावः, वैसा ही जन्म, वही भाव हमको नेक्स्ट जन्म में मिलने वाला है। तो क्योंकि भगवान हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाना चाहते, क्योंकि भगवान, अब जाहिर सी बात है, सारी जिंदगी जिसके विषय में सोचेंगे अंत में तो वही नजर आएगा ना, माइंड में वही आएगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है 8.5 में, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अगर अंत में मेरे विषय में सोचोगे तो मेरे पास आओगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। यहाँ पर भगवान ने जो ये बात बोली है ना 64 में, वक्ष्यामि ते हितम, अब केवल भक्ति के हित की बात करेंगे। अब भगवान सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा किसी चीज में फायदा है तो किस में है? मेरे विषय में सोचो, क्योंकि मेरे विषय में सोचोगे तो फिर तुम दोबारा कभी भी जन्म मृत्यु के दुखों भरे इस श्रृंखला का हिस्सा नहीं बनोगे। बारंबार इस दुख काल एवं संसार में तुमको आना नहीं पड़ेगा और ये संसार के दुख कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरे विषय में सोचना चाहिए। यानी भगवान कह रहे हैं अपने मन में केवल मेरे बारे में विचार करो, मेरे बारे में सोचो। कैसे करो? अब ये मनन कैसे करना है? आगे भगवान बोलते हैं, भव मत भक्तो, अब मनन करो और मेरा भक्त बनो। कुछ दफा हमें ऐसा होता है, हम किसी चीज में मन तो लगाते हैं लेकिन उसमें हमारा आकर्षण नहीं होता है। जैसे जब परीक्षा के दिन होते हैं तो स्टूडेंट्स पढ़ाई में मन लगाते हैं क्योंकि उनको याद करना होता है, उनको एग्जाम देना होता है, लेकिन उसमें रुचि नहीं होती है, उसमें प्रेम नहीं होता है। वो क्या सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी एग्जाम्स खत्म हो जाएं, फिर मैं खेले जाऊंगा, मजा करूंगा। उसमें रुचि नहीं है लेकिन उसमें मन लगा रहा है जबरदस्ती। लेकिन भगवान बोले नहीं, आपको मेरा भक्त बनना है, मन भी लगाना है और प्रेम के साथ। भक्त, अब भक्त के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया 9.26 में, भगवान ने भक्ति को बहुत सरल कर दिया। भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति पहर्तम अश्नामी प्रियतात्मना, कि तुम चाहे प्रेम, ऐसे मैं तुमसे कुछ मांग थोड़े रहा हूं, तुम प्रेम के साथ एक छोटा सा पत्ता, फल, फूल, एक पानी का एक ग्लास भी ला के मुझे दे दोगे ना, उसके अंदर शर्त क्या है? सिर्फ भगवान ने एक ही शर्त रखी, भक्ति प्यहर्तम। क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? क्या कहा है? तदहम भक्ति प्यहर्तम, सिर्फ प्रेम और भाव के साथ, भक्ति भाव के साथ यदि मुझे कुछ भी दोगे ना, मैं आइटम को नहीं देखता हूँ, मैं तुम्हारे भाव को देखता हूँ कि तुमने किस भाव से मुझे दिया है। तो ये प्रेम जो है वो, यदि उस प्रेम के साथ, भक्ति के साथ तुम्हें मेरा मनन करना है। और आगे भगवान ने कहा, मत याची, मेरी पूजा करो। यहाँ पर भगवान 100% साकार भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि पहले भगवान ने कहा मन मना, मन को मुझ में लगाओ और मेरे भक्त बनो। भक्त बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण का साकार विग्रह चाहिए। और मध्याजी भगवान कहते मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु। नमस्कुरु का मतलब होता है कि भगवान को दंडवत प्रणाम करें, भगवान को नमस्कार करें। तो ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुम्हारा मन मुझ में तब लगेगा जब तुम मुझे अपने सामने रखोगे, है ना। अगर भगवान सामने होंगे तो हमारा मन भगवान। अब देखो हमारे पास क्या होता है, किसी का ध्यान करने के लिए हमारे पास शरीर मन वाणी, ये तीन चीजें होती हैं। किसी का भी, या तो हम शरीर से मतलब सेवा करते हैं, या मन से, या वाणी से गुणगान करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे खुद के लिए, भगवान ने कहा मन मना, यानी कि मन से मेरे विषय में सोचो, मेरे बारे में सोचो। मत भक्तो, यानी शरीर से भक्ति करनी, कैसे प्रणाम करना है भगवान को, और भगवान कह रहे मत भक्तो। और मध्या जी, मेरी पूजा करो, यानी मेरी वाणी, वाणी से मेरे बारे में बोलो, गुणगान करो, मेरा मेरे पवित्र नाम का उच्चारण करो, मेरे शब्दों का प्रचार करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी चीजें करने के लिए बोला है कि मन वाणी और शरीर सब कुछ तुम्हें मेरी सेवा में समर्पित करना है। और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो क्या होगा, देखो भगवान ने पहले ही बोल दिया, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए। ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे बारे में सोचोगे या मुझे नमस्कार करोगे या मेरी भक्ति करोगे तो इससे मुझे फायदा होगा। ये सारा का सारा तुम्हारा फायदे के लिए है। और भगवान ने आगे बताया इससे क्या होगा, मामे वैश्यसी, तुम मेरे पास आओगे। भगवान ने बोला अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास आओगे। अब भगवान के पास जाकर हमारे हमारा क्या फायदा होगा, वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 8.5 में, चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 15। भगवान कहते हैं मामुपैथ्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। पहले भगवान ने बताया कि परम सिद्धि क्या है, मुझे प्राप्त करना है। और आज भगवान बता रहे हैं कि बस ये चार काम करो, क्या करो, मन मना, मेरे बारे में सोचो, मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, ये कार्य करो, तो फिर वो परम सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मामे वैश्यसी, तुम मेरे पास आ जाओगे। फिर भगवान ने कहा कि अब भगवान ने इतना बोल दिया, काफी था ना, कि भगवान ने बोल दिया आ जाओगे तो आ जाएंगे। लेकिन भगवान फिर कहते हैं सत्यम ते, देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। भगवान यहाँ पर सच बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जैसे भगवान को पता है कि हम जो लोग हैं ना यहाँ पर, वो इतना जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं जब तक कि वो बोलता नहीं है मैं सच कह रहा हूँ। भगवान ने बोल दिया, भगवान परम साक्षी है, भगवान परम प्रमाण है, लेकिन फिर भी बोल रहे मैं सच बोल रहा हूँ। और आगे तो यहाँ तक कह दिया प्रति जाने, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमको कि तुम अगर ऐसा करोगे तो दोबारा कभी भी दुखों से भरी इस दुनिया में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। क्यों प्रियो सी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। भगवान अपने प्रेम का इजहार करते करते थक नहीं रहे। भगवद गीता कुछ लोग बोलते श्रीमद भगवद गीता भी केवल तत्व ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है मगर यहाँ पर दो प्रेमियों का वार्तालाप है जिनके अंदर प्रेम का संबंध है। और भगवान अपने भक्त को प्रेम का आश्वासन देकर कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे बारे में सोचोगे, यदि तुम, अब देखो भगवान ने साफ साफ कहा मत भक्तो, मेरे भक्त बनना, यानी कि भक्ति तो बहुत सारों की जा सकती है, देवताओं की। पहले भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि भक्ति तो ना देवताओं की भी की जा सकती है, जिनो भूतों की जा सकती है, पितरों की जा सकती है, कब्रों को की जा सकती है, लेकिन यदि तुम्हें मेरे पास आना है तो मत भक्तो, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान ने पहले ही बोल दिया कि जो बेवकूफ है वो देवताओं की भक्ति करते हैं। भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए। ये भगवान यहाँ पर हमें, जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं, और भगवान उनके लिए, भगवान ने कहा प्रतिजानी प्रियोसी मैं तुमको वचन देता हूँ कि यदि तुम मेरी भक्ति करोगे, यदि तुम मेरे विषय में सोचोगे, यदि तुम मुझे नमस्कार करोगे तो इट इज इनफ, मेरे पास आने के लिए ये काफी है। मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मेरे भक्त बन जाओ, मन में मेरे बारे में विचार करो। तो ये श्रीमद् भगवद गीता खाली तत्व ज्ञान नहीं है, ये प्रेम का संदेश है। भगवद गीता इज नॉट जस्ट फिलोसफी, इट इज लव प्रेजेंटेड थ्रू द मीडियम ऑफ फिलोसफी। यानी ये क्या है, तत्व ज्ञान के माध्यम से प्रेम का संदेश दिया जा रहा है। बात तो प्रेम की हो रही, भगवान साफ साफ कह रहे हैं मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ क्योंकि प्रतिजाने प्रियोसी में। अभी भगवान ने प्रतिजाने शब्द बोला, पहले भी बोला ना भगवान ने 9.31 भगवान ने कहा कांतेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती के बेटे निश्चय पूर्वक घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यानी कि अर्जुन को बोला कि तुम ये घोषणा करो कि यदि कोई मेरे भक्त बनेगा तो उसका नाश तो मैं होने नहीं दूंगा। और आज भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं ये कि अगर कोई मेरा भक्त बन जाएगा उसका नाश नहीं होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास लेकर जाने की मैं अपने ऊपर लेता हूँ। यहाँ मामे वैश्यसि सत्यम दे प्रतिजाने प्रियोसी में, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे अपने साथ में, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, अपने धाम में लेकर जाऊंगा। मेरे भक्त की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेम करता हूँ अपने भक्तों से, और वो जरूर मेरे पास आएंगे यदि वो मेरे बारे में सोचेंगे, मेरी भक्ति करेंगे। अब ये किसको, कौन भक्त होगा जिसकी ये इच्छा नहीं होगी कि हम भगवान के पास जाएं। तो लेकिन फिर भी हमें डाउट होता है ना अक्सर कि पता नहीं हमारी भक्ति इतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान ने सारे डाउट्स क्लियर किए। भगवान ने कहा तुम हृदय से मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मुझे नमस्कार कर रहे हो, तो बस फिर मेरी जिम्मेदारी है, आगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपने धाम में लेकर जाऊंगा। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक नंबर 65 है, ये रत्न है, ये मतलब सबसे अनमोल रत्न। ये जो दो श्लोक हैं 65 और 66, इन दोनों को अनमोल रत्न, ये श्रीमद् भगवद गीता का निचोड़ कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ज्वेलरी बॉक्स जैसे होता है ना, खजाना, एक खजाने का बॉक्स होता है, इसकी तरह है। अब जो ज्वेलरी बॉक्स में क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं, एक तो ऊपर का ढक्कन होता है और दूसरा सेंटर का हिस्सा होता है जहां पर खजाना रखा होता है, और नीचे बॉक्स होता है ना। तो ये तीन, इसी तरह से अब ये श्रीमद् भगवद गीता भी तीन हिस्सों में डिवाइड की गई है। 1 से लेकर 6 तक कर्म योग है, और ये क्या है, ये जो ज्वेलरी बॉक्स है, यानी कि वो पूरा बॉक्स है जिसके अंदर कर्म योग है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। और उसका ढक्कन है 13 से लेकर 18 तक, वो ढक्कन है, बाकी बीच में खजाना है, कहां से लेकर 7 से लेकर 12 तक पूरा खजाना, जो भक्ति योग भगवान ने रखा है ना, वो 7 से लेकर 12 तक है। अब इसका ना कैसे आए डेमो, कि नीचे क्या है, कर्म योग है, बीच में भक्ति योग है, और ऊपर संन्यास योग है। अब कोई देखेगा इस तरह से, अगर ऊपर ऊपर से देखेगा संन्यास योग दिखेगा ना सिर्फ, तो भगवान ने जो रत्न है जो इसके अंदर खजाना है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अनमोल रत्न है वो ऊपर ढक्कन पे चिपका दिए, ढक्कन पे रख दिए। क्या कैसे, जैसे अगर हम लोग कोई चीज लेते हैं ना तो उसके अंदर और कुछ भी हो लेकिन जो सबसे अच्छा होता है उसकी पब्लिसिटी करने के लिए ऊपर कैसे रख दिया जाता है। जैसे अगर कोई मूवी होती है तो भी उसमें जो सीन या फिर जो सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट होता है वो ऊपर रखते हैं ना, ऊपर निकाल के रख देते हैं। या फिर पोस्टर्स में भी वही चीज जो सबसे ज्यादा उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको निकाल के रखते कि भाई हाँ ये देख के लोग इसको परचेस करेंगे कि हाँ इसमें इतना अच्छा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म योग दिया, ज्ञान योग दिया और भक्ति योग दिया। लेकिन ये क्योंकि आखिरी के जो 6 अध्याय है उसमें ज्ञान योग है यानी कि संन्यास की विधि है, लेकिन फिर भी वही चीज जो भक्ति योग सेंटर में भगवान ने बताया वही यहाँ पर भी हमें बताया। अब देखो जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं 65, ये एज इट इज ऐसा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग जो 9 अध्याय है उसमें भी बताया। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक भक्ति योग है, और चैप्टर नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण ने पहले बताया अर्जुन को, ज्ञानम देहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य तेहित इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज ज्ञात्वानेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक बातें कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यानी कि भगवान ने पहले बोल दिया कि अभी मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको जानने के बाद और कुछ रह ही नहीं जाता है, आपको सुनने के लिए और कुछ नहीं है, बस वही अगर तुम्हें पता चल जाता है तो बस काफी है और कुछ शेष नहीं रहता। वक्षा में शेष रहता, कुछ भी नहीं रह जाता। और 9.1 में भगवान ने क्या बताया, इदम तु ते गुह्यतम वक्षाम्या न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यश ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। चूंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यानी कि पहले ही बताया कि मैं अब तुम्हें बहुत ही परम गुह्य, ये राज विद्या राज गुह्य भगवान ने कहा, ये समस्त जितने भी गोपनीय रहस्य हैं उनमें सबसे ज्यादा गोपनीय रहस्य ये भगवान ने कहा 9.2 में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत ही सुख पूर्वक किया जाता है। और क्या बताया था, मतलब इतनी तारीफ करने के बाद जिसके की जो शब्द मैं बता रहा हूँ वो इतने इम्पोर्टेंट है कि जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं रहता, वो बताई भगवान श्री कृष्ण ने 9.34 में। भगवान ने क्या कहा, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। वही शब्द जो आज भगवान हमें बता रहे हैं, देखिए उनमें कोई भी अंतर नहीं है। 65 में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पहली लाइन देखिए, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। और 9.34 उसमें क्या भगवान ने कहा, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यानी भगवान ने पहले ही ये टॉप सीक्रेट बता दिया है ना, एज इट इज बताया ना आज भी। और भगवान जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि ढक्कन के ऊपर सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान रत्न रख के दे दिए कि देखो इसके अंदर इतना कीमती खजाना डाला है मैंने। और आगे वाली लाइन में थोड़ा सा अंतर है उसको हम देखेंगे। आगे भगवान ने कहा, मामे वैश्यसि युक्तु एवं आत्मान मत परायण। अब 9.34 में भगवान ने कहा, अगर तुम मेरे मेरे भक्त बनोगे, मेरे बारे में सोचोगे, मुझे नमस्कार करोगे तो क्या, मामे वैश्यसि मेरे पास आओगे लेकिन युक्त एवं, उसमें आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से मेरे अंदर तलीन रहना, मेरे युक्त रहना है, कंटिन्यूस मुझे अपने से कभी दूर नहीं करना है, युक्त रहना है, मतलब योग अपना कभी भी हटाना नहीं है, मत परायण और मेरी भक्ति में अनुरक्त कंटिन्यूस रहना है, फिर तुम अपनी जिम्मेदारी पे ऐसा करो और फिर मेरे पास आ जाओगे। यानी कि जिम्मेदारी तुम्हारी है, जैसे ही तुम हटोगे तो क्या होगा,
अगर तुम अपने रास्ते से हट गए तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ना तुम अगर लगे रहोगे ना भक्ति में फिर मेरे पास आओगे। लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपनी करुणा के समस्त द्वारों को खोल दिया और कहा, मामे वैशसी सत्यम पे प्रति जाने प्रियोसी में, तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुम करो, तो मेरी भक्ति करो। अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम मुझे याद ना कर सके तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, मैं आऊंगा किसी न किसी रूप में तुम्हें याद कराने के लिए, और तुम यदि हृदय से मेरे बारे में सोचोगे, मेरी भक्ति करोगे, मुझे नमस्कार करोगे तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ तुम्हारी। मामे वैश्यसी सत्यम दे, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रति जाने मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं परम नाम को छोड़कर बार बार इस भौतिक जगत में जो दुखालय जो मेरे रहने की जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए क्या करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, बार बार आता हूँ ताकि तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए मैं पूरा पूरा प्रयत्न करता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कैसे तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, बस तुम खाली अपनी तरफ से सिंसियर रहो, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर आकर अपनी करुणा और प्रेम के समस्त द्वारों को खोल दिया और कहा कि खाली आप सिंसियरिटी से के साथ, शुद्ध भावना के साथ मेरे पास आओ, बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उनका चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। ये ज्ञान, अब देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान का सर्व गुह्यतम, तो ज्ञान का मकसद क्या है, ज्ञान क्यों हासिल करते हो, ताकि आप अपने दुखों से छुटकारा हासिल कर सको। और दुखों से निवृत्ति भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे पास जब तक नहीं आओगे तब तक तो दुखालय अशाश्वतम संसार में आना पड़ेगा। तो श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि ज्ञान का सर्वोत्तम गुह्य अंश क्या है, भगवान की भक्ति करना, सदैव उनका चिंतन करना, उन्हीं के लिए कार्य करना, यानी कि मन से इंद्रियों से और वचन से केवल भगवान के विषय में कार्य करना। व्यवसायक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, सिर्फ खाली दिखावे के लिए ध्यानी बनना, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा जीवन ऐसा है कि भगवान के लिए टाइम नहीं निकलता, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आप अपने जीवन को ऐसे नहीं बनाओ कि भगवान के लिए समय ना निकले, आप अपने जीवन को ऐसे बनाओ कि सदैव भगवान का स्मरण कर सको, मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म भगवान के लिए हो, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 2400 घंटे कृष्ण का चिंतन करता रहे। ये मन ही तो भगवान में लगाना है। जैसे श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर मिसाल देते हैं एक लड़की की, जिसकी शादी हो जाती है लेकिन वो प्रेम किसी और से करती है, और बताते हैं श्री प्रभुपाद जी कि अगर वो घर में रहती है, जिस घर में रह रही है, अब जिसकी जिस घर में शादी हुई है तो अपने पति की सेवा करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, घर को अच्छे से ढंग से बना के रखती है, लेकिन कंटिन्यूस अपने प्रेमी के विषय में सोच रही होती है कि कैसे समय निकालूं और कैसे मैं उससे बात करूं, कैसे उससे मिलने जाऊं, कैसे मैं उसका विचार करूं, कंटिन्यूस मन में केवल उसी के विषय में सोच रही होती है। और इसी तरह से हमें करना है इस संसार में, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको बहुत अच्छे से पूरा करना है, लेकिन मन में केवल अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के विषय में ही सोचना है, क्योंकि हमारा रियल संबंध, हमारा नित्य संबंध केवल कृष्ण के साथ है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि 2400 घंटे, यानी कि ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए समय, भगवान के लिए कंटिन्यूअस हमेशा उसके उस सबका मन में चिंतन होना चाहिए। और आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण नाम को आ जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करेगा। बस यही तरीका है। कंटिन्यूस भगवान के विषय में सोचो कि मैं कैसे, हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड। मैं जो कर रहा हूँ वो कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो कार्य उसके साथ साथ में आपको कैसे प्रसन्न करूं ये मुझे बता दो। बस ये एक जो प्रामाणिक गुरु ही हमें बता सकता है कि आपका हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कैसे हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र यानी सखा है। ये भगवान श्री कृष्ण हर किसी को नहीं बताते, आगे तो भगवान बोलेंगे बताना भी नहीं जाके किसी को। यहाँ पर वो क्योंकि प्रेम करते हैं और जो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि वहां से जिस दिन से आपने गीता पढ़ना शुरू किया और भगवान ने आपको इस योग्य बनाया कि आप श्रीमद् भगवद गीता को अध्ययन कर रहे हो, उसी दिन से आप भगवान के प्रेमी बन गए। क्योंकि ये गुह्य ज्ञान आम लोग के लिए तो है ही नहीं। ये तो यानी कि भगवान ने जब आपके अंदर वो क्वालिटी देखी है कि भगवान, आप भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रेम करते हो, तभी आपको गीता के विषय में समझाया, तभी श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर तरीके से आपको हर एक चीज को बताया है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हो, भगवान से प्रेम करते हो। तो यहाँ पर आकर जो ये प्रेम प्रॉमिस है वो उन सबके लिए है जो कि भगवान से प्रेम करते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये खाली अर्जुन के लिए नहीं है, जो अर्जुन जैसा कार्य करेगा, क्या कार्य करेगा, अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण करेगा। और कृष्ण का आदेश कौन सा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये आदेश का पालन करेगा। तो फिर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई भी अर्जुन के इस पद का अनुसरण करेगा वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त करेगा। कौन सी सिद्धि, मामे वैश्यसि सत्यम पर, वो भगवान को प्राप्त करेगा जो कि सर्वोच्च सिद्धि है। और इसी सिद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा 8.15 में, माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतम्। क्योंकि एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है तो फिर इस दुखमय संसार में नाप्नुवन्ति कभी भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि उसे परम सिद्धि सिद्धिं परां गतम् कि उसको परम संसिद्धिं परां गतम् उसको परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, और वो क्या है, कृष्ण की प्राप्ति। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे यदि आप अर्जुन के पद का अनुसरण करोगे तो वही सिद्धि आपको भी प्राप्त होगी। श्री प्रभुपाद जी आगे बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं कि ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें कृष्ण के मनमोहक रूप के विषय में बता रहे हैं कि ध्यान किसी निराकार का नहीं करना है, क्योंकि मन मना के बाद भगवान ने कहा है मद भक्तो, भक्ति तो उस कृष्ण की कर, भगवान साक्षात खड़े और कह रहे मेरे भक्त बनो, तो उसी भक्त उसी कृष्ण का भक्त बनना है जो कि जिनका रूप काले बादलों की तरह, जिनके बाल घुंघराले और जो इतने सुंदर मुख वाले हैं, हाथों में बंसी पकड़ते हैं, टेढ़ा खड़ा होते हैं, मंद मंद मुस्कान है, सांवले सलोने भगवान है, और उनके रूप माधुर्य का कोई शब्द नहीं मिलते उनके विषय में बोलने के लिए। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे बारे में सोचो, तो भगवान के उसी सुंदर स्वरूप के विषय में सोचना है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में आया है। हम रोजाना दर्शन आरती में ब्रह्म संहिता के जो शब्द उच्चारण करते हैं उसमें भगवान के स्वरूप का जो दर्शाया गया है उसी के विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं वैणुं क्वणन्तम् अरविन्ददलायताक्षम् बर्हवतम समासितम बुध सुंदरांगम कंदर्प को मिट्टी का मणिया विशिषा शुभम। वर्णों कणंत मरविन, उनके मुख पे बांसुरी है और उनके जो होंठ हैं वो बिंबाफल की तरह चमक लाल रंग के हैं। उनके मंद मंद मुस्कान है, घुंघराली लटे हैं और बहुत ही घेरे घनेरे बादल की तरह उनका श्यामल रंग है, टेढ़े खड़े होते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी उनको देखकर मूर्छित हो जाते हैं, लज्जा जाते हैं कि हम सुंदरता के देवता हैं और यहाँ तो देखो ये क्या है, साक्षात मूर्तिमान सुंदरता खड़ा है। तो भगवान को देख के करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता तुच्छ आना लगने लगती है। कंदर पकोटी कमनी अविशेष शोभम। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं हर बहुत सारे ग्रंथों में भगवान की सुंदरता का वर्णन पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि स्वरूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूप की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो इस श्लोक में भगवान ने साफ साफ कहा है, मन मना बाबा मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, मैं जो खड़ा हूँ कृष्ण रूप में, मेरी भक्ति करनी है, मेरे बारे में सोचना है, मुझे नमस्कार करना है, मेरी आराधना करनी है, मेरी पूजा करनी है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं सावधान, ऐसा न हो कि कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य रूप की ओर तुम्हारा मन मुड़ जाए, क्योंकि ये जो प्रॉमिस है ना, मामे वैश्यसि सत्यम तम प्रति जाने प्रियोसी, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें अपने धाम में लेकर जाऊंगा, ये सिर्फ कृष्ण ने लिया है और किसी और भगवान के रूप ने ये प्रॉमिस नहीं किया है तुम्हारे साथ, फिर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं यथा विष्णु नारायण राम विराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। साफ साफ श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि आपको भगवान ने जिस रूप के बारे में कहा है ना, अब देखो किस साफ साफ भगवान ने कहा मन मना मैं जो खड़ा हूँ मेरी बात, ऐसे नहीं बोला कि ठीक है तुम मेरे बारे में भी सोचो, मेरे दूसरे रूपों के बारे में भी सोचो, ऐसे तो नहीं बोला ना भगवान ने। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भगवान के बहुत सारे रूप हैं, विष्णु नारायण राम विराह नरसिंह आदि, किंतु का मतलब होता है ये रेड सिग्नल है कि यहाँ पर आपको उधर नहीं जाना है। भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो कि अर्जुन के समक्ष खड़ा था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। ये जो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप का जो चिंतन है, मन की जो एकाग्रता है भगवान के इस सुंदर रूप की ओर, ये है सबसे गुह्यतम ज्ञान। क्योंकि भगवान ने पहले बोल दिया सर्व गुह्यतम अम्बूय शुणु मे परमम च, और सबसे परम वचन कौन सा बोला है, टॉप सीक्रेट मोस्ट सीक्रेट क्या बोला है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तो मेरा भक्त बनो, मेरे रूप के विषय में सोचो, मेरा ही ध्यान करो, मेरी भक्ति करो, ये सबसे ज्यादा गुह्यतम भगवान का आदेश है। और भगवान ने ये प्रिय श्लोक, भगवान ने ये अपना प्रकट क्यों किया है, ये रूप के इसमें आप मेरी भक्ति इसी में करो, तो इसका आंसर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रियोसी में, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सामने आया हूँ तुम्हारे। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण इसलिए किया गया है क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत ही प्रिय सखा था। भगवान अब जिससे हम प्रेम करते ना उससे कुछ नहीं छुपाते, जो सबसे ज्यादा सीक्रेट चीजें होती ना वो भी उसके साथ शेयर करते हैं। अब बाकी चीजों में क्या होता है, अगर कोई धंधा वगैरह हम आपस में करते हैं, कोई मतलब बिजनेस वगैरह में, तो हम बोलते हैं कि ठीक है हम आपके साथ एकदम सिंसियर हैं, एक तो लेकिन फिर बहुत सारी चीजें छुपाते हैं। लेकिन जैसे सच्चे में प्यार करते हैं ना उसमें उसको सब कुछ बता देते हैं, सारे अपने सीक्रेट। तो अर्जुन को आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये कहा है, प्रति जाने प्रियोसी में, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो से मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुम मेरे इस स्वरूप का मनन करोगे, मेरी भक्ति करोगे, मेरे इस स्वरूप को नमस्कार करोगे, मेरी पूजा करोगे, शरीर मन वाणी से मुझे सब कुछ अर्पण कर दोगे, तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाता हूँ कि मैं तुम्हें अपने धाम में अवश्य लेकर जाऊंगा, जहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, जहाँ पर कोई संकट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, और मेरे साथ रहोगे और मुझसे कभी दूर नहीं होगे, क्योंकि वापस दुखालयम अशाश्वतम संसार में कभी आना नहीं पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।